नमस्कार भारत, तारीख 20 जून, दिन मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। दलित राजनीति करने वाली मायावती क्या उन्हें समर्थन दे सकती हैं?
मायावती जी की पूरी राजनीति न केवल दलित समाज पर केंद्रित है बल्कि उत्तर प्रदेश में केंद्रित है। जब तक कोई सुयोग्य कैंडिडेट नहीं आएगा भाषीय के समाज से, तब तक उनके सामने वाकई संकट है।
दार्जिलिंग में बेमियादी बंदी के छठे दिन गोरखा नामधारी दलों की संयुक्त बैठक आज। गौमांस रखने के शक में अखलाक की हत्या या फिर बच्चा चोरी की अफवाह में दो लोगों की हत्या, हत्यारी भीड़ की शक्ल में कौन?
ऐसे राष्ट्रवादी लोगों के सत्ता में आने से कई जो अपने को भी जातीय तत्व मानते हैं वो परेशानी का अनुभव करते हों और वो उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हों।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से बीजेपी के दलित नेता और दो बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके नाम पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी ने सर्वसहमति की बात तो की थी, लेकिन नाम तय करने को लेकर उनके साथ कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। बीते सप्ताह उत्तर कोरिया में 15 महीनों की कैद से रिहा होकर घर वापस लौटे अमरीकी छात्र 22 साल के ऑटो वार्मियर की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मौत के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की है और कहा है कि ऑटो वार्मियर को उत्तर कोरिया में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फ्रांस में चरमपंथी रोधी दस्ते के अधिकारी एक हमले की जांच कर रहे हैं जिसमें एक कार चालक ने जानबूझकर अपनी कार से पुलिस वैन को टक्कर मारी थी। पेरिस के जाने माने शांस एलिजे सड़क पर हुई इस घटना में कार में तुरंत आग लग गई। फ्रांस की सुरक्षा सेवाओं के अनुसार मौके पर 31 साल के कार चालक की मौत हो गई। हादसे में किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर नहीं है। फ्रांस के गृह मंत्री गेरार्ड कोलम्ब ने पत्रकारों को बताया,
cette voiture contenait un certain nombre d'armes
d'explosifs। कार में कई हथियार और विस्फोटक सामान थे जिससे वो व्यक्ति आसानी से अपनी कार को धमाके से उड़ा सकते थे। कार चलाने वाले की मौत हो गई है और मामले की जांच का काम अब चरमपंथ रोधी विभाग के पेरिस अभियोजक को दिया गया है। इस घटना से पता चलता है कि देश में खतरे का स्तर काफी अधिक है। फ्रांस के गृह मंत्री गेरार्ड कोलम्ब के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोनों पक्षों के वार्ताकारों की औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। ब्रसेल्स में पहले दिन की बातचीत के बाद यूरोपीय संघ की ओर से मध्यस्थ माइकल बार्नियर और ब्रिटेन की तरफ से मध्यस्थ डेविड डेविस ने कहा कि वो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तारीखों, प्राथमिकताओं की रूपरेखा पर सहमत होंगे। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल बार्नियर ने कहा, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन दोनों के लिए एक निष्पक्ष समझौता संभव है और यह समझौता न हो पाने से बेहतर है। यही मैंने आज डेविड डेविस से कहा। यही कारण है कि हम ब्रिटेन के साथ काम करेंगे। हमारी ओर से शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं होगा। मैं एक रचनात्मक रवैया रखूंगा और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के हितों की बात दृढ़ता से करूंगा। ब्रेक्सिट पर बात करने के लिए यूरोपीय संघ की ओर से मध्यस्थ माइकल बार्नियर के शब्द। केंद्रीय पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिशों के बावजूद आग फैलती ही जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आग के कारण एक अग्निशमन कर्मचारी समेत 64 लोगों की मौत हो चुकी है। आग के कारण 130 लोग घायल हुए हैं। पुर्तगाल के लेरिया जिले में इस कारण बने धुएं के घने बादल देखे जा सकते हैं। कुछ गाँव आग से पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं। वेनेजुएला में मौजूदा सरकार में उपराष्ट्रपति डियोसडातो केबेलियो ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स पर आरोप लगाया है कि वो उनके देश के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट में शामिल देश कोलंबिया, ब्राज़ील, चिली और अर्जेंटीना वेनेजुएला की राजनीतिक और आर्थिक संकट पर बात करने के लिए मेक्सिको में बैठक कर रहे हैं। काराकास में एक सरकारी रैली में डियोसडातो केबेलियो ने कहा कि ये देश वेनेजुएला के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। देश में बीते कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेलुगुदेशम पार्टी, टीआरएस और एआईएडीएमके ने केंद्र सरकार को इस पर समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी सीपीएम पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सर्वसम्मति का झुंझुना तो दिखाया लेकिन फैसला सुनाकर चौंका दिया। दलित राजनीति की बसपा प्रमुख मायावती भी दलित उम्मीदवार का विरोध करने से कतरा रही हैं। शिवसेना ने कहा है कि इससे जातिवादी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा,
राष्ट्रपति झाल्यानंतर केवल दलितांचं नाही तर देशाचं भलं करणार असेल तर राष्ट्रपति तुम्ही कोणी करा, शिवसेना तुमच्या सोबत आहे। पण केवळ मतांचं राजकारण करणार असाल, मतांच्या राजकारणाच्या मध्ये शिवसेना कधी पडू शकत नाही, कारण मतांची राजकारण ही कदाचित पक्षाला जिंकून देत असतील पण देशाला रसा तळाला घेऊन जातात।
अब सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और क्या इस फैसले ने कांग्रेस व विपक्षी दलों को सांसद में डाल दिया है? यही सवाल पूछा हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन संजोगवश इन दिनों कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से बहुत धीरे धीरे चलती है। इतनी धीरे धीरे चलती है कि लगता है जैसे कि उसे जो करना है वो या तो वो समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करना है, या जो फैसले लेती है वो फैसले सही समय पर गलत फैसले लेती है। मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि दो तीन जो नाम जो चल रहे थे उनमें से किसी एक नाम को एक कंसेंसस के लिए सामने लाना चाहिए था, चाहे भले ही वो मीडिया में आ जाता, भले ही उस पर चर्चा होती। आज की तारीख में उसके पास, मैं नहीं समझता कि जो सबाल्टर्न समाज है, हाशिए का जो समाज जिसे कहा जाता है, उसमें काबिल सक्षम समर्थ नेता नहीं है। इस देश ने केआर नारायणन को देखा है राष्ट्रपति, और वो न केवल दलित होने के कारण महत्वपूर्ण एक शख्सियत थे बल्कि दलित समाज में भी वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत विजनरी और राष्ट्रपति के रूप में अपने स्टैंड पर लगातार टिके रहने वाले राष्ट्रपति थे।
मायावती के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, उन्होंने कहा कि वो दलित उम्मीदवार का विरोध नहीं कर सकती है, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल दलित उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो वो सोच सकती हैं।
नहीं, मायावती जी के लिए बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि देखिए रामनाथ कोविंद साहब की जो इमेज है, और एक जन के तौर पे हमने उनको बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आमतौर पे जिस तरह के बड़े नेता हैं उनमें वो डिफरेंट हैं, वो बहुत ही शालीन हैं, कट्टरता भरा उनकी शख्सियत नहीं है। लेकिन मायावती जी के लिए परेशानी की बात यह है कि क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और मायावती जी की पूरी राजनीति न केवल दलित समाज पर केंद्रित है बल्कि उत्तर प्रदेश में केंद्रित है, तो इसलिए उनके सामने जब तक कोई सुयोग्य सबाल्टर्न कैंडिडेट नहीं आएगा जो हाशिए के समाज से, तब तक उनके सामने वाकई संकट है।
अगर कांग्रेस उम्मीदवार अपनी तरफ से कोई खड़ा भी करती है दूसरे दलों के साथ मिलकर, तो क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो रामनाथ कोविंद को टक्कर दे सके?
देखिए, जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें, इसकी जो पूरी जो मतदाता जो सूची है, तो उस पर अगर आप गौर करें तो संपूर्ण विपक्ष अगर भारत का मिल जाता तो 20-22 हजार वोट कम पड़ते भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के गठबंधन सहयोगियों को, करीब 20-22 हजार, तो विपक्ष का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए जीत सकता था अगर आप बिल्कुल अर्थमेटिक पर जाइए। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने बहुत खूबसूरती के साथ दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पश्चिम से लेकर के पूरब तक, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे विपक्षी दलों में सेंध लगाई है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ बहुमत अल्पमत या जीत और हार का चुनाव नहीं होता है। ऐसे चुनाव में जब पॉलिटिकली लोग मौजूदा प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सरकार के अनेक इश्यूज पर, अनेक कदमों से बुरी तरह असहमत है, जब पूरे समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा है राजनीतिक तौर पे, तो विपक्ष एक वैकल्पिक उम्मीदवार को सामने ला सकता है बशर्ते कि उसके अंदर विल पावर हो।
रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। अब 22 जून को कांग्रेस के अलावा सभी विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7,995, 9,915 और 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। उत्तर कोरिया में कैद से रिहा होकर अमेरिका लौटे छात्र ऑटो बार्मबियर की मौत हो गई है। वो 15 महीने तक उत्तर कोरिया के जेल में कैद थे और कोमा की हालत में पिछले सप्ताह रिहा किए गए थे। उनके परिवार का आरोप है कि उत्तर कोरिया में ऑटो बेहद खराब हालत में थे और उन पर जुल्म ढाए गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए मानसी दाश से।
बीते सप्ताह उत्तर कोरिया में 15 महीनों की कैद से रिहा होकर अपने घर लौटे अमरीकी छात्र 22 वर्षीय ऑटो वार्मबियर की मौत हो गई है। ऑटो के परिवार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके बेटे की मौत परिवार के सदस्यों के बीच हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो की मौत पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटो वार्मबियर की मौत हो गई है। वो बीते 1.5 साल से उत्तर कोरिया में थे। बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन कम से कम हम उन्हें वापस उनके परिवार के पास ला पाए। ऑटो को वहां पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर कोरिया एक क्रूर सत्ता है, लेकिन हम इस मामले को हैंडल कर सकते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। उत्तर कोरिया ने ऑटो वार्मबियर को कोमा की हालत में रिहा किया था। अमेरिका पहुंचते ही उन्हें सिनसिनाटी में उनके घर के नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑटो वार्मबियर कोमा में कैसे पहुंचे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें गंभीर दिमागी चोटें थीं। उत्तर कोरिया के अनुसार ऑटो वार्मबियर की हालत के लिए बोट्यूलिज्म और नींद की गोली जिम्मेदार है। ऑटो के पिता फ्रेड का आरोप है कि उत्तर कोरिया में उनके बेटे पर जुल्म किए गए हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इससे पहले उनके पिता ने कहा था,
Even if you believe their explanation of botulism and a sleeping pill causing the coma, and we don't,
हम बोट्यूलिज्म और नींद की गोली की वजह से कोमा की बात नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप मान भी लेते हैं तो एक सभ्य देश ऐसी जानकारी नहीं देने और पीड़ित को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए कोई बहाना नहीं बना सकता। ऑटो वार्मबियर के पिता फ्रेड के शब्द। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के छात्र ऑटो वार्मबियर को बीते साल जनवरी में उत्तर कोरिया का दौरा करते समय एक होटल से प्रचार चिन्ह की चोरी करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 15 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके दिमाग में गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें मेडिकल आधार पर उत्तर कोरिया से रिहा किया गया था।
तो जैसा कि आपने सुना, उत्तर कोरिया में कैद से रिहा होकर अमरीका लौटे छात्र ऑटो वार्मबियर की मौत हो गई है। फिर से भारत लौटते हैं, जहां गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग हिल्स में बेमियादी बंदी के छठे दिन आज गोरखा नामधारी दलों की संयुक्त बैठक होने वाली है। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच वी वांट गोरखालैंड के नारों के साथ प्रदर्शनों का दौर जारी है। आखिर क्यों हो रही है गोरखालैंड राज्य की मांग और क्या है इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, सुनिए दार्जिलिंग से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की खास रिपोर्ट।
हल्की बूंदाबांदी और सिहरन के बावजूद आज भी सैकड़ों लोग दार्जिलिंग के चौक बाजार पर जमा हुए। लोगों ने यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और गोरखालैंड की मांग के पूरे होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। यहां मेरी मुलाकात हुई प्रमिला भूटिया से। उन्होंने बीबीसी को बताया कि ममता बनर्जी पहाड़ के लोगों का भरोसा खो चुकी है। प्रमिला भूटिया ने कहा,
अच्छा नहीं है ये।
क्या चाहते हैं आप लोग?
गोरखालैंड चाहिए, हम लोग को गोरखालैंड चाहिए।
गोरखालैंड की मांग 100 साल से भी अधिक पुरानी है। समय समय पर अलग अलग नेताओं ने अपने स्तर से इसकी मांग रखी है, लेकिन इस आंदोलन को सबसे अधिक चर्चा साल 1986 में तब मिली जब सुभाष घिसिंग ने गोरखालैंड आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। वे गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता थे। लंबे समय तक चले उनके आंदोलन के दौरान करीब 1500 लोग मारे गए और हिंसा की सैकड़ों घटनाएं हुई। उस दौरान कॉलेज के छात्र रहे वरिष्ठ पत्रकार स्वराज थापा बताते हैं,
गोरखालैंड का मूवमेंट जो है 1907 से चल रहा है, लेकिन जब 1986 से ये तीव्र गति पकड़ के रखा हुआ है और तब से लेकर आज तक गोरखालैंड का मुद्दा, अलग राज्य का मुद्दा, वो चल रहा है।
अब इस आंदोलन का नेतृत्व विमल गुरुंग के हाथ में है। वे सदैव ही नेता है। उन्होंने सुभाष घिसिंग के नेतृत्व वाले आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घिसिंग के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद विमल गुरुंग साल 2007 में उनसे अलग हो गए और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नाम से अपनी पार्टी बना ली। दोनों गोरखा नेताओं के आंदोलन में क्या फर्क है? मेरे इस सवाल पर जाने माने स्तंभकार उपेंद्र मणि प्रधान ने बीबीसी से कहा,
दोनों नेताओं का मुझे लगता है कि सुभाष घिसिंग जी मोर मैच्योर पॉलिटिशियन, उनका एक खूनी आंदोलन था, करीब 1500 से ज्यादा गोरखाओं को मार दिया गया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। बिमल गुरु जी वेरी इनोवेटिव आंदोलन किया था, उन्होंने बिल्कुल ही अहिंसा वादी आंदोलन जो गांधी जी के बताए रास्ते पे चल के उन्होंने आंदोलन किया। जैसे आप देखेंगे 2007 से लेकर के 2013 तक जो आंदोलन चला उसमें सिर्फ 4 या 5 लोगों की मौत हुई थी, और उसमें मौत तब हुई जब पश्चिम बंगाल सरकार ने गोली चलाई।
दरअसल गोरखा रहने की लड़ाई सिर्फ गोरखा जाति के लोगों की लड़ाई नहीं है, इसमें दार्जिलिंग हिल्स के सभी लोग शामिल हैं, चाहे वे लेप्चा हो, भूटिया हो या फिर शेरपा। वरिष्ठ साहित्यकार रिंजू टुप्पा कहती हैं कि गोरखा कोई जाति नहीं बल्कि पॉलिटिकल टर्म है। रिंजू टुप्पा ने बीबीसी से कहा,
एक टुप्पा कम्युनिटी से हूँ, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर है
जी।
लेकिन टुप्पा होने के साथ मैं अपने आप को गोरखाली मानती हूँ। मैं कोई टुप्पा है, कोई तामंग है, कोई ये डिफरेंट डिफरेंट लेप्चा है। हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड जाति बेस्ड आइडेंटिटी है। ये गोरखा जो है, ये गोरखा हमारे लिए और हमारे ये गोरखालैंड मूवमेंट के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है।
दार्जिलिंग हिल्स के लोग इस बार के आंदोलन को अंतिम लड़ाई करार दे रहे हैं। वे कहते हैं कि इस बार गोरखालैंड से कम किसी भी शर्त पर समझौता नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बहरहाल दार्जिलिंग हिल्स में कम्प्लीट बंद है। अब यह देखना होगा कि इस बार के आंदोलन से गोरखा समुदाय को क्या हासिल होता है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए दार्जिलिंग में।
गोरखालैंड की मांग की पृष्ठभूमि बता रहे थे रवि प्रकाश। और अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। मानसी, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
भारत के भावी राष्ट्रपति के नाम की चर्चा कल दिन भर खबरों में थी और आज अखबारों में भी वही है बड़ी खबर। डेली पायनियर के अनुसार रामनाथ कोविंद का नाम के साथ, इस नाम के साथ भाजपा ने चौंकाया भी है और उलझाया भी। इंडियन एक्सप्रेस में आज उन्नी का कार्टून भी इसी पर है। पीएम मोदी के चेहरे वाला बैज लगाए अमित शाह निश्चिंत मुद्रा में है और एक व्यक्ति उनसे कह रहे हैं अचतुर मूव सर। दिलचस्प हेडिंग दी है दैनिक भास्कर ने, लिखा है 2019 जीतने के लिए मोदी को बिहार में मिले यूपी के रामनाथ। और अब कुछ और बड़ी खबरें बता दूं। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर एक छोटी सी खबर बीचों बीच अखबार में छपी है। खबर है कि राजस्थान में सरकारी अनुदान पाने के लिए गौशालाओं को अब गायों के फुटेज पेश करने होंगे। अखबार के अनुसार प्रदेश में करीब 1500 रजिस्टर्ड गौशालाओं को चारे के बिल के लिए सरकारी अनुदान पाना है तो उन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देनी होगी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार दार्जिलिंग में जारी हिंसा के बीच वहां बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अखबार कहता है कि एक स्कूल की छुट्टी 23 जून से होने वाली थी लेकिन अब बच्चे घर जा पाएंगे या नहीं, इस पर अभी कश्मकश जारी है। इस बात से बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं और स्कूल प्रशासन भी चिंता में पड़ गया है। हिंसा जारी रही तो स्कूलों में खाने के सामान की भी कमी हो सकती है। यहां तक कि कर्फ्यू जैसे हालातों के लिए के कारण स्कूल परिसर से बाहर रहने वाले शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से हो नहीं पा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार भारतीय रेल दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए यानी 12 घंटे या 17 घंटे करने की तैयारी कर रही है और इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगी।
जनसत्ता की खबर है कि भारत की हार के बाद क्रिकेटर जो है उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे देश में गुस्सा है लेकिन जो भारत प्रशासित घाटी है उसमें जश्न है, ये खबर जनसत्ता की है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास आपका। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। भारत में पिछले कुछ समय में भीड़ के हाथों हत्याओं की घटनाएं सामने आई हैं। दादरी में फ्रिज में गौमांस रखने के शक में अखलाक की हत्या हो या झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह में दो लोगों की जान लेने वाली भीड़। प्रधानमंत्री ने स्वघोषित गौ रक्षकों को अपराधी तक कहा लेकिन भीड़ के हाथों बर्बरता का सिलसिला थमा नहीं है। कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इस हिंसक भीड़ तंत्र को राजनीतिक आश्रय मिलता है। सुनिए बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी की रिपोर्ट।
बोल जय श्री राम।
जय श्री राम।
जोर से बोल
जय श्री राम।
जय श्री राम।
जय श्री राम।
जय श्री राम। बोल।
बिजली के खंभे से बंधे एक नौजवान को घेर कर पीटते हुए उसके हमउम्र लड़के, ये दृश्य कहीं का भी हो सकता है। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस की भरमार है। दादरी में अखलाक, अलवर में पहलू खान, लातेहार में मोहम्मद मजलूम और आजाद खान, ये नाम उन लोगों के हैं जिन्हें कातिल भीड़ ने अलग अलग जगहों पर पीट पीट कर मार डाला। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे खुद मुख्तार गौरक्षकों को अपराधियों का गिरोह बताया।
मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण का बहुत असर नहीं पड़ा। गाय बचाने के मिशन पर निकले गिरोह अब भी लगातार सक्रिय हैं। कातिल भीड़ सिर्फ गाय बचाने वालों की नहीं है। कुछ समय पहले झारखंड में बच्चे उठाने की अफवाह फैलाकर 7 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सरकारी कर्मचारियों ने कथित तौर पर एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसने खुले में शौच करने पर मजबूर महिलाओं की तस्वीर ले रहे उन कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की थी। इस कातिल भीड़ को यह भरोसा कैसे मिलता है कि वो सरेआम किसी की भी जान लेने को आजाद हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि इसके लिए पूरा तंत्र जिम्मेदार है।
जो ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसमें कि जुडिशरी भी शामिल है, वो जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो पावर में रही होती हैं या जो पावर में आने की जिनकी क्षमता होती है, उन लोगों के खिलाफ जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो भले ही आज ऑपोजिशन में हो, उनके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन लेने का दम बहुत कम देखा जाता है।
राजनीतिक पार्टियां कई बार भीड़ की हिंसा को एक सामान्य घटना बताकर उसकी आपराधिक गंभीरता को कम करती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद व्यापक पैमाने पर हुए सिख विरोधी दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक हल्की फुल्की घटना की तरह पेश किया।
कुछ दिन को दुनिया, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है।
इसी तरह 2002 में गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना होती रही है। इस बारे में उनका एक बयान काफी विवादास्पद भी हुआ।
कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है।
जिस भाव से नरेंद्र मोदी ने कुत्ते का बच्चा मुहावरे का इस्तेमाल किया, उसमें किसी समुदाय की बेइज्जती करना उनका मकसद नहीं रहा होगा, लेकिन इस जुमले का लोगों ने जो चाहा वो अर्थ लगाया। पर ऐसा हमेशा नहीं हुआ। अलवर में 1 अप्रैल को जब कथित गौरक्षकों ने पहलू खान नाम के आदमी को पीट पीट कर मार डाला, तो राज्य के गृह मंत्री गुलाब राय कटारिया ने दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की।
क्या है कि दोनों तरफ से है, जब उनको मालूम है कि राजस्थान से गो तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है, तो कुछ गौ भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना ये अपराध है।
और जब 2015 में दादरी के पास उन्मादी भीड़ ने फ्रिज में गोमांस रखने की अफवाह के आधार पर अखलाक नाम के एक अधेड़ का कत्ल कर दिया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश चंद्र शर्मा ने इसे दुर्घटना बताया।
जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, उस परिवार के साथ 2 परिवार और भी रहते हैं जो गांव के बीच में हैं। उनकी दीवारें आपस में छूती हैं, उनको किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, तो ये एक दुर्घटना माना जाए।
सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की चिंता है कि ऐसे अपराधों की सख्त सजा न मिलने से भारतीय शासन तंत्र की प्रकृति बदली जा रही है।
जिस तरह का मॉब वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि चलता चला जा रहा है, रोज ही इस तरह की लिंचिंग वगैरह हो रही है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान बिल्कुल एक फासीवाद की तरफ बढ़ रहा है।
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सिद्धांतकार KN गोविंदाचार्य मानते हैं कि हिंसा आत्मरक्षा में भी की जाती है।
कारण और होगा कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों के सत्ता में आने से कई जो अपने को भी जातीय तत्व मानते हैं, वो परेशानी का अनुभव करते हों और वो उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हों, वो डेमोक्रेटिकली नहीं लड़ना चाहते हों, ये भी तो एक कारण हो सकता है।
और उसके बाद उन पर बदला या रिटेलिएशन होता है।
बदला की जरूरत नहीं, अपने लिए आत्मरक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं लोग।
लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल ठीक नहीं।
हम मानते हैं कि तो कानून को अपने हाथ में लेकर चलना ये किसी भी हालत में क्षम्य तो नहीं होना चाहिए।
ये थे गोविंदाचार्य के शब्द। नदीम खान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भीड़ के शिकार हुए लोगों को न्याय हासिल करने में मदद करते हैं।
उनका कहना है कि पूरा तंत्र इस रास्ते में रोड़े खड़े करता है।
ज़्यादातर केसेस जो लिंचिंग के होते हैं उनमें लोग बहुत गरीब होते हैं, वो खुद अपने केस की पैरवी नहीं कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई एक्टिविस्ट चाहिए होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो पहला टारगेट वो एक्टिविस्ट और वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पुलिस थाने में उनको बुला के धमकाना शुरू किया जाता है कि आप इस केस से हट जाइए, आप इससे दूर हो जाइए, फिर उनको नोटिसेस सर्व करनी शुरू कर दी जाती हैं।
ऐसे माहौल में राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित किए जाने की सिफारिश की। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन मानते हैं कि ऐसे फैसलों से विजिलंटी या गौरक्षक गिरोहों के हौसले बुलंद होते हैं।
डेफिनेटली उनकी बातों से जो मॉब मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं उनको इनकरेजमेंट तो मिलेगा।
ऐसा लगता है कि लिंचिंग की एक घटना के बाद पूरा देश जैसे दूसरी घटना होने का इंतजार करता है, और जब वो घटना हो जाती है तो एक बार फिर से निंदाओं और सार्वजनिक भर्त्सनाओं का एक और दौर शुरू हो जाता है।
मुझे इतना गुस्सा आता है,
जय श्री राम बोल।
मुझे इतना गुस्सा आता है,
बोल जय श्री राम।
मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना।
राजेश जोशी, बीबीसी, दिल्ली।
भीड़ तंत्र आखिरकार क्यों हत्या करने पर आमदा हो जाता है? राजेश जोशी की विशेष रिपोर्ट आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे खेल समाचारों की।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। अच्छे फॉर्म में चल रही भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में पूल बी के अपने आखिरी मैच में आज नीदरलैंड्स के खिलाफ उतरेगी। भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब उसकी कोशिश अपनी बेहतरीन लय को बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में जाने की होगी। भारत ने अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 4-1 से, दूसरे मैच में कनाडा को 3-0 से और तीसरे मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि अब भारत के सामने उससे कई ज्यादा मजबूत और खतरनाक टीम नीदरलैंड है। विश्व के चौथे नंबर की टीम नीदरलैंड आक्रामक हॉकी खेलने के लिए जानी जाती है। इस मैच में उतरने से पहले भारत को अपनी किन कमजोरियों पर काम करना होगा, बता रहे हैं खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी।
भारतीय टीम में जो है कमी इस तरीके से नहीं नजर आ रही, मगर ऐसा है कि कुछ कुछ जगह पर जब ट्रैपिंग जो है थोड़ी सी अभी कुछ कहीं हिस्सों में जो है मैच के थोड़ी कमी नजर आ रही है। जैसे एक गोल जो है भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कंसीड किया था वो लग रहा था कि जैसे उनका थोड़ा सा फोकस जो है थोड़ा सा हट गया था मैच से, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है 6-0 से आगे थे, मगर बड़ी टीमों के साथ जो है ये फोकस हट जाने वाली बात जो है ये बिल्कुल महंगी साबित हो सकती है।
और वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद पाकिस्तानी टीम आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि फाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय टीम 3रे नंबर पर खिसक गई है। वनडे खिलाड़ियों की रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को सेमीफाइनल में नाबाद 123 रन की पारी खेलने से 3 पायदान का फायदा हुआ, जिससे वो 10वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 4 पायदान के फायदे से संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर और जसप्रीत बुमराह 19 पायदान से 24वें स्थान पर आ गए हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। bbchindi.com का जिक्र कर दूं, bbchindi.com पर इस समय जो खबरें चल रही हैं उसमें एक खबर जिसे कि आप पढ़ सकते हैं कि हमलों से ध्वस्त सड़कों पर किस तरह से इफ्तार की दावत दी गई, और ये सीरिया की राजधानी दमिश्क के उपनगर डूमा में इफ्तार की दावत में शामिल हुए बच्चों की जो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं उससे जुड़ी खबर है। इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। बीते सप्ताह उत्तर कोरिया में 15 महीनों की कैद से रिहा होकर घर वापस लौटे अमरीकी छात्र 22 वर्षीय ऑटो वार्मबियर की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मौत के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की है। फ्रांस में चरमपंथ रोधी दस्ते के अधिकारी एक हमले की जांच कर रहे हैं जिसमें एक कार चालक ने जानबूझकर अपनी कार से पुलिस वैन को टक्कर मारी थी। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोनों पक्षों के वार्ताकारों की औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।